اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیٰ علی سیدنا محمد بیدد کل ذرت میت الف الف مرت. سورہ بقرہ آیت نمبر 87.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا
بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو، تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو.
بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ ذکر کر نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ نے لگاتار 144,000 انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے، آخری جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے اس میں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں تسلی دے رہا ہے کہ تم فکر نہیں کرو کہ اگر جو نہیں مانتا تو تمہیں اس کا غم نہیں کرنا چاہیے، فکر نہیں کرنی چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُولِ. اللہ کہتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے ایک کے بعد ایک رسول بھیجا، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. وہ آتنا عیسیٰ ابن مریم البینات تے وایدنا بروح القدس. اللہ کہتا ہے میں نے عیسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کی مدد کی میں نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. افکلما جاکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، کیا ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ لیکن جب بھی ان کے پاس رسول آئے اور جو ان کی مرضی کا پیغام نہیں لاتے تھے تو یہ تکبر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ففریقاً کذبتم، ایک گروہ کو، کچھ پیغمبروں کو جھٹلا دیا، ففریقاً تقتلون، اور کچھ پیغمبروں کو قتل کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ مجھے بنی اسرائیل کا اس لیے بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو تھی اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم تھی، تو اتنے پیغمبر اس میں بھیجے. اب جیسے ہم چنے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت اور اتنی عالی شان رسول دیے، اول آخر پیغمبر، تمام پیغمبروں کے انبیاء امام ہمیں عطا فرمائے تمام پیغمبروں کے. تو اللہ تعالیٰ اب مجھ سے کہہ رہے ہیں، اب مجھے اس کو بجائے اس کے کہ اپنا دماغ میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف لے کے جائے یا کسی اور کی طرف، نہیں، مجھے اپنی طرف لانا ہے کیونکہ یہ اب قرآن میرے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کہ دیکھو میں نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ تمام رسول آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہمیں بھی تو معلوم ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس کو مان رہے ہیں؟ صرف زبان ہی ماننا ہے، اور زبان ہی ماننا اللہ کو قبول نہیں ہے بالکل. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آخر کار میں نے بنی اسرائیل کو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر کے دکھایا، ایک بڑی نشانی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھا رہا تھا، اپنی قدرت دکھا رہا تھا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अब अल्लाह ताला ने एक औरत के ज़रिए अल्लाह ताला ने बग़ैर शौहर के बच्चे को पैदा करके दिखाया और पाक रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उनकी मदद की। अब ईसा अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत थी कि उनमें रूहानियत का अंसर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ बाप नहीं था तो दुनिया उसमें शामिल नहीं थी। अल्लाह की तरफ फरिश्ते की अल्लाह ताला ने फरिश्ते के ज़रिए भेजा तो रूहानियत उन पर गालिब थी, तो वो बिल्कुल पाक साफ थे। जब भी अल्लाह ताला ने उनको पैदाइश ही में पैदा होते ही उनको बुलवा दिया। अब ये कौन बुलवा रहा था? इतना छोटा सा बच्चा कोई बुलवा सकता है किसी को? नहीं, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला मुझे अपनी कुदरत बता रहा है कि देखो एक पंगड़े में जो बच्चा है वो पूरी बात कर रहा है, पूरी कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे किताब दी है, ये पूरी बात कर रहा है। तो ये कौन है? पीछे कौन बोल रहा है? पीछे कौन बोल रहा है? अल्लाह बोल रहा है, ये अल्लाह ने कहा है। तो अब अल्लाह ताला अब इनकी बनी इसराइल की रविश बता रहा है कि क्या रविश थी, कि इनके पास हमेशा रसूल आए, एक के बाद एक रसूल आए, लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जितने भी रसूल आए, वो उनके मिजाज की बात नहीं करते थे, उनके नफ्स के मुताबिक बात नहीं करते थे, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बात नहीं करते थे, तो वो उनसे तकब्बुर करते थे। अब मुझे ये समझना है कि वो तकब्बुर करते थे तो क्या मैं तकब्बुर नहीं कर रही? मैंने अगर अपना मिजाज नहीं छोड़ा, मैंने अगर अपनी मर्ज़ी नहीं छोड़ी तो मैं तकब्बुर नहीं कर रही? मैं भी तो तकब्बुर कर रही हूँ। मुझे इस तरीके से इस आयत को लेना है। मुझे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम से कोई मतलब नहीं है, वो लोग गए, वो ख़त्म हो गया। अब मैं हूँ तो मुझे समझना है कुरान, और कुरान मेरे लिए है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए है, क़यामत तक कुरान है, क़यामत तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब मुझे ये सोचना है कि अल्लाह ताला ने तो मुझे उनकी आदत बता दी, क्यों बता रहा है अल्लाह ताला? अल्लाह कह रहा है, हदीस है कि आपको वो याद होगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत कदम ब कदम बनी इसराइल की तरह होगी, कदम ब कदम, यानी एक लेश का, एक बालिश का भी उनमें फ़र्क नहीं होगा। यानी उनको इतना अडॉप्ट कर लेंगे, इतना उनके रंग अपने ऊपर चढ़ा लेंगे कि उन्होंने सवाए बनी इसराइल, सवाए उसके अल्लाह और रसूल से उन्हें नज़र नहीं आएगा, उन्हें बस वो बनी इसराइल की, वो यहूद और नसारा की, वो जो दुनियावी तरक्कियाँ हैं, दुनियावी जायदाद हैं, दुनियावी साइंस है, वही उन्हें नज़र आ रही है और कुछ नज़र आ। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मेरे पास तो हुजूर आ गए, मैं क्यों नहीं मान रही? मेरे पास किताब है, मैं उसके मुताबिक क्यों अमल नहीं कर रही? मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल क्यों नहीं कर रही? मैं घर की औरत हूँ, बाहर की नहीं हूँ। चलो मैं घर की औरत हूँ, घर में रहती हूँ, बच्चे हैं, शौहर है, माँ बाप हैं, सब रिश्तेदार हैं, मैं क्यों नहीं अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक चल रही? मैंने क्यों अपनी मर्ज़ी शामिल की हुई अल्लाह की बातों में? अल्लाह के आगे मैं अपनी मर्ज़ी क्यों रख रही हूँ? अपनी ख्वाहिश को क्यों रख रही हूँ? दुनिया को मैंने क्यों रखा हुआ है? इसलिए कि मुझे भी पसंद नहीं है कि मेरे बातों में कोई अल्लाह और रसूल की बात आए। मुझे भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे नसीहत करे, कोई मुझे मेरी मर्ज़ी के खिलाफ बात बताए, कोई मुझे ये कहे कि नहीं अल्लाह ताला ये पसंद नहीं करता, ये कोई मुझे, मैं सुनना नहीं चाहती। मैं ये सुनना नहीं चाहती कि कोई मुझे कहे कि तुम झूठ मत बोलो, तुम मुनाफिकत मत करो, तुम गीबत मत करो, ये कोई मुझे पसंद नहीं आता। अगर कोई किसी के मुंह पे कहे तो हमें पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा, क्यों? कि हम इन चीज़ों को पसंद करते हैं। तो अब सेम यही चीज़ है कि जो हमारे पसंद की चीज़ नहीं है, अब ये अल्लाह ताला ने मुझे सच बोलने को कहा है, तो अब अगर मैं सच नहीं बोलूँ, सच बोलूँगी तो मेरे तो दुनिया के लिहाज से नाकाम हो जाऊँगी। इस वक्त सारी दुनिया झूठ पे चल रही है, हम मुसलमान ख़ास तौर से सब झूठ पे चल रहे हैं, हमारी अपनी घरों की ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी झूठ पे चल रही है। तो क्या ये अब हम, मैं मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही? हमें जो तो ये पसंद नहीं है कि मैं सच बोलूँ, मुझे तो मेरा मफाद तो सारा झूठ बोलने में है। जहाँ सारा मेरा मफाद तो लोगों को धोखा देने में है, मेरा मफाद तो लोगों की खुशामदे करने में है, मेरा मफाद तो लोगों को चिपड़ी चुपड़ी बातें करने में है, मेरा इसमें मैं इसमें अपनी शान समझती हूँ, अपनी बड़ाई समझती हूँ इसमें। ये तमाम छोटी छोटी चीज छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं गौर करूँ अपने ऊपर और इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को गौर करूँ और तो मैं बिल्कुल ये आते हैं हर एक को सीरियसली, हर आयत को अपने ऊपर सीरियसली अप्लाई करनी चाहिए। क्या मुझ में झूठ बोलने की आदत नहीं है? क्या मुझ में तकब्बुर नहीं है? क्या मुझ में लालच नहीं है? क्या मुझ में दुनियादारी नहीं है? क्या मैं अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ नहीं चल रही? मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजार रही? जहाँ मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह और रसूल को छोड़ के अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारी, मैं हो गई मुशरिक, मैं हो गई मुनाफिक, ये याद रखें। तो अल्लाह ताला अब हमने जो ये लोग भी यही करते थे, नहीं जो पैगंबर पसंद नहीं आता था बाज़ एक को तो झुटला देते थे कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानते, और बाज़ एक को हम वो कर देते थे, कत्ल कर देते थे। कितने लोग ये उसको कत्ल किया, ईसा अलैहिस्सलाम की कत्ल की कोशिश तो की लेकिन नाकाम हो गए। अच्छा ये याह्या अलैहिस्सलाम को कबल कत्ल किया इन लोगों ने, और उनको कत्ल किया ज़करिया अलैहिस्सलाम को, और कितने पैगंबर थे जिनको इन्होंने कत्ल किया, क्योंकि उनकी वो जो बात करते थे वो उन्हें पसंद नहीं आती थी। अब हम देखें कुरान जो बात कर रहा है, अल्लाह वाले जो बात कर रहे हैं, क्या वो हमें पसंद आ रही है? अगर हम चले, उन लोगों ने तो पैगंबरों को कत्ल कर दिया, हम किसको कत्ल कर रहे हैं? हम अपने को कत्ल कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं अल्लाह और रसूल का तरीका बच्चों को। अल्लाह और रसूल के मुताबिक हमने बच्चों को बताया, हमने अदब अदाब उनको सिखाया, हमने उनको अल्लाह और रसूल के हुक्म मानने की तरगीब दी है, उनको हम समझाते हैं कि अल्लाह का कहना मानो, उनको हम मना करते हैं कि झूठ मत बोलो, उनको मना करते हैं कि गलत बात मत करो, चुगली नहीं करो। बच्चे तो चुगली करके लड़ाई हुई हो आके वो जो चुगली करते हैं माँ बाप फौरन समझ, इस पर कितने कितने कत्ल हो जाते। तो ये क्या चीज़ है? ये वही है जो उन्होंने किया, अब हम कर रहे हैं। तो अब हमें अकल के होश लेना है, नाखून लेने हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे खोल के बता दिया उनकी आदतें, तो मुझे उनके नक्शे कदम पर नहीं चलना। मुझे अगर बचना है और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना है, अल्लाह का दीदार हासिल करना है, तो मुझे रसूल पाक सल्लम का तरीक़ा लेना होगा और अल्लाह वालों का तरीक़ा लेना होगा। अगर हमें चलो रसूल पाक सल्लम नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वक्त का जो इमाम है, हर एक को चाहिए अपने वक्त के इमाम को पहचाने और वक्त के इमाम के साथ अपने को जोड़े। अगर उसको अगर वो चाहता है अल्लाह का दीदार और रसूल पाक सल्लम का क़ुर्ब, तो वक्त के इमाम के साथ अपने को जोड़ेगा। अगर नहीं जोड़ेगा, ज़बरदस्ती तो है नहीं, मत जोड़ो मत मानो। वक्त के इमाम को तो तबलीग जो हुक्म रसूल पाक सल्लम का है, नज़ीर और बशीर, ये दो हुक्म थे रसूल पाक सल्लम की, दो जिम्मेदारियाँ थी रसूल पाक सल्लम की कि नज़ीर और बशीर। बस यही तमाम अल्लाह वालों की ड्यूटी है कि लोगों को डराओ और जो डर जाए उन्हें खुशखबरी सुना दो। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाता है उनकी बनी इसराइल की एक और आदत जो हम लोगों में बहुत ज़्यादा है।
بلعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں.
اچھا اب وہ لوگ کیا کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, ہمارے دلوں پہ ہمارے علم کی تھیلے چڑھے ہوئے ہیں, چادریں چڑھی ہوئی ہیں, ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے. हमारे पास वो इतना इल्म है, इतना नॉलेज है कि हमें तुम्हारे इस इल्म की ज़रूरत नहीं है। यानी हमारे दिल जो उस इल्म से पुर हैं, थैलियों में बंद है। एक ये हो गया। दूसरा ये कि हम तुम जो भी कहते रहो, हम तुम्हें नहीं सुनेंगे। क्यों? कि हम सुनना नहीं चाहते तुम्हें। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है, हम ये नहीं कर रहे, हम भी यही कर रहे हैं। कौन कोशिश कर रहा है कि हमें मुझे अल्लाह मिल जाए? किसने अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह पाना बना लिया? हम तो दुनिया के झगड़ों में पड़े हुए हैं, सास और ससुर के झगड़ों, नंदे और भाभियों के झगड़ों में पड़े हुए हैं, हम दुनिया के फैशनों के झगड़ों में पड़े हुए हैं, हम रस्म रिवाज के झगड़ों में पड़े हुए हैं, हम अजीज़ों अकारिब के झगड़ों में पड़े हुए हैं, हम तो इन चीज़ों में, दुनिया की चीज़ों में पड़े हुए हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा कि हमें अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह से मिलना है, अल्लाह को देखना है। कब हमने, क्या हम अपनी ज़िंदगी सुबह से शाम तक इस नज़रिए पे गुजारते हैं? जो हम काम करते हैं, हमारा नज़रिया यही होता है कि जो मैं काम कर रही हूँ अल्लाह को पाने के लिए कर रही हूँ, अल्लाह को हासिल करने के लिए कर रही हूँ, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए कर रही हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी जान के कर रही हूँ? नहीं, मैं तो जो काम कर रही हूँ बस दो पैसे कमाने के लिए कर रही हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ बस एक अपनी पोजीशन बनाने के लिए कर रही हूँ, अपना घर बार वो सब बनाने के लिए, उसको सजाने के लिए जो मेहनत कर रही हूँ, मैंने तो अल्लाह के रास्ते के लिए मेहनत की ही नहीं है। तो जब तक मैं ये काम, तो मैं ये तमाम करूँगी, लेकिन सिर्फ मेरी नीयत बदलनी चाहिए। जिस दिन मेरी नीयत बदल गई, उस दिन काम में से कुछ नहीं छूटेगा जो मैं कर रही हूँ। लेकिन जब मेरी नीयत बदल गई, तो वही नीयत क्या? अल्लाह को पाना, अल्लाह की रज़ा। जो मैं काम कर रही हूँ अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रही हूँ, काम वही होंगे। नीयत बदल गई, उसके बरकतें, उसकी रहमतें बिल्कुल बदल जाएंगी, हमारा दिल और दिमाग बिल्कुल फारिग हो जाएगा, बिल्कुल हल्का हो जाएगा, हमारे कंधों से बोझ हट जाएगा, हमारा दिल हल्का हो जाएगा, हमारे दिमाग हल्के हो जाएंगे, और हर वक्त हम मेहनत वही कर रहे होंगे लेकिन एक अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और इश्क के रौ में बहते हुए। हर वक्त अल्लाह और रसूल का इश्क हमारे सर पे सवार होगा, उसको राज़ी करने के लिए। काम दुनिया के है, अब ये नहीं कि मैं वजीफे कर रही हूँ, ये मराकबे कर रही हूँ, या हज उम्र पे रमज़ान में मैं उम्रों पे जा रही हूँ, नहीं, मैं घर में ही काम कर रही हूँ, घर में ही झाड़ू पोछा कर रही हूँ, घर ही में मैं शौहर की खिदमत, बच्चों की खिदमत कर रही हूँ। नीयत मेरी बदल गई। क्यों? ये क्यों? ये इसलिए कि अल्लाह कहता है, हदीस है कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर मैं अब इस चीज़ को समझे, इस नुक्ते को समझे, मेरी नीयत है अल्लाह को पाने की, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की, अल्लाह का दीदार। अब उसके लिए मैं अल्लाह को जानने की कोशिश में लग गई, मैं देख रही कि किस चीज़ से अल्लाह राज़ी होता है, मेरे कौन से अमल से राज़ी होता है, मैं कौन सा अमल करूं जिससे अल्लाह राज़ी होगा। अमल मैं दुनिया के कर रही हूँ, लेकिन मेरी नीयत चेंज हो गई, मेरे ख्यालात चेंज होते जाएंगे, मेरे सामने सब अल्लाह रसूल की नाराज़गी के वाक़ात सामने आते जाएंगे, मैं नुक्तों को समझती चली जाऊँगी, और जो अल्लाह की रज़ा की तरीक़ा होगा वो मैं लेती चली जाऊँगी। काम मैं यही करूँगी, काम मेरे बदलेंगे नहीं, ये याद रखें। अगर मेरी अल्लाह की नीयत नहीं है, अल्लाह के पाने की नीयत नहीं है, और मैं रोज़े रख रही हूँ, मैं उम्रे कर रही हूँ, मैं वजीफे कर रही हूँ, मैं हज उम्रे कर रही हूँ, या मैं खैर खैरात कर रही हूँ, या लोगों की खिदमत कर रही हूँ, फ़ायदा 0/0 होगा। क्यों? नीयत तो आपकी दुनिया की है, अल्लाह की तो नहीं है। सिर्फ नीयत को चेंज करना है, उसमें खलूस, उसमें उसको खालिस करना है, उसमें खालिस, इतना खालिस करना है कि दुनिया से नज़र हटा लो, नज़र अल्लाह पे, अल्लाह के साथ जोड़ लो। क्यों? कि वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो मोहब्बत देने वाला, वो इज्जत देने, वो सब कुछ करने वाला है। अब देखें इस वक्त क्या ये हालात, इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात हुए, ये कौन है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे अल्लाह है, वो जानता है, वही कर रहा है, वो हिकमतें जानता है, हम नहीं जानते। हमें इस पर सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करना है, और अपने को सीधा रखना है, अपने को सीधा सिरात अल मुस्तकीम पे चलाना है, अपने को इधर उधर से नहीं करना, परेशान नहीं होना, किसी चीज से परेशान नहीं होना, क्योंकि जाएंगे कहाँ, अल्लाह के पास जाएंगे। जवाब तो हमें वहाँ देना है, हमें दुनिया वालों को जवाब नहीं देना, हमें अल्लाह को जवाब देना। काम इस तरीके से किए जाएं कि हर जगह मैं जवाब दे अल्लाह के यहाँ हूँ। तो जब मैं ये सोचूंगी कि मैं जवाब दे अल्लाह के हूँ, मेरा ढंग ही चेंज हो जाएगा, मेरा रविश ही चेंज हो जाएगी, मेरी जबान चेंज हो जाएगी, मेरे मामला चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मेरे सामने अल्लाह आ गया, अल्लाह का वो खौफ आ गया, अल्लाह की वो मोहब्बत आ गई, अल्लाह की वो रहमत आ गई, रसूल पाक सल्लम का इश्क आ गया। वो तो तरीक़ा तो मेरे पास रसूल पाक सल्लम ने करके दिखा दिया है, तरीक़े में तो कोई शक व शुबा है ही नहीं। अब हम ये कहें कि हम कैसे करें, तो हमारे पास तो रसूल पाक सल्लम है, और फिर अल्लाह ताला ने क़यामत तक अपने वक्त के इमाम भेजेगा हमारी तरबियत करने के लिए, हमारे तस्किए नफ्स करने के लिए, हमारे दिल और दिमाग की और नफ्स की सफाई करने के लिए क़यामत तक लोग आते रहेंगे। जस्तजू की है, तलाश किया है, जब तक जस्तजू नहीं होगी, तलाश नहीं होगी, तलब नहीं होगा, नहीं मिलेगा। अब फिर अल्लाह ताला, अच्छा अब हम के, अब जब हम कोई अच्छी बात कहते हैं ना, तो हम कहते हैं नो, मुझे मालूम है क्या सही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ नहीं मुझे मालूम है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन करूँगी मैं वही जो मैं करूँगी, जो मेरा दिल चाहेगा। मैं तुम्हें नहीं सुन रही, मैं तुम्हारी नसीहत नहीं सुन रही, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही है। अब जो नसीहत करने वाला, वो किसकी नसीहत, किसकी बातें बता रहा है, अल्लाह और रसूल की। तो वो मेरे दिल को अच्छी नहीं लग रही, वो मुझे पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो मेरे स्टेटस के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है, वो मेरी उस बातों के ख़िलाफ़ है, उसमें मुझे कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, उसमें मुझे कोई अपने आगे स्टेटस नज़र नहीं आ रहा, उसमें मुझे कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। तो ये है, हम लोग इस तरह कहते हैं। तो हमारे दिल भी गलाफों में बंद हैं बिल्कुल, जब उसमें कोई बात जा ही नहीं रही, कोई समझ, तो अब हमें अपना एनालाइज खुद करना चाहिए कि मैं अगर अमल नहीं कर रही और आगे नहीं बढ़ रही, मुझे नुक्ते समझ में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये मैं बीमार हूँ, मैं रूहानी बीमार हूँ। बात अल्लाह और रसूल की हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रही, बात अल्लाह और रसूल की हो रही है, मुझे मुश्किल लग रही है करना, कि अब नहीं हो सकता, ज़माना बदल गया है, साइंस ने तरक्की कर ली है, मॉडर्न ज़माना है, मेरे घर के हालात ऐसे नहीं हैं, मेरे लोग ऐसे नहीं हैं, ये तमाम सारी हुज्जतें और बातें हैं जो हम आपस में दलील सामने रखते हैं, लेकिन अल्लाह के आगे कोई चीज़ नहीं चलेगी। तो अगर मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही, नुक्ते समझ में नहीं आ रहे, और आसानी से मैं इस सिरातुल मुस्तकीम को लेने में मुझे दिक्कत पेश आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे दिल भी गलाफों में बंद है। तो अल्लाह कहता है, इसका जवाब फिर अल्लाह बड़ा अच्छा देता है। अल्लाह कहता है वल्लाहु बिकुफ्रिहिम फकलिलम्मा युमिनून। अल्लाह कहता है ये वजह नहीं है, वजह यह है कि मैंने इनको अपनी रहमत से दूर कर दिया। जाओ, नहीं समझते तो मत समझो, नहीं मानते तो मत मानो। अब जब अल्लाह ने अपनी रहमत का हाथ मेरे सर से उठा लिया, तो मुझे क्या समझ में आएगी। तो जब अल्लाह के रहमत, जब मैं अल्लाह की तरफ जाऊंगी, बढ़ूंगी, कोशिश करूंगी, जद्दोजहद करूंगी, मेहनत करूंगी, अपने को वक्त करूंगी, जब भी तो अल्लाह ताला की रहमत का हाथ मेरे ऊपर आएगा, जब भी तो मेरा दिलो दिमाग खुलेगा, जब भी तो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत आएगी। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह का रहमत का हाथ मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ। अल्लाह चाहता है, क्योंकि अल्लाह ने चाहता है जब भी तो मैं अपना महबूब दिया, चाहता है जब भी तो अपने मुझे कुरान दिया, एक एक रुकते मुझे समझाए, लेने के तरीके समझाए, इनकार करने के नुकसान समझाए, एक एक चीज नुकता मुझे समझा रहा है। अल्लाह तो चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहती, तो इस जब तक मैं नहीं चाहूँगी, तो अल्लाह ताला भी मुझ पर फोर्स नहीं करेगा, तो मुझ पर से वो उस रहमत उठ जाएगी, मुझे वो समझ ख़त्म हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, नुक्ता समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो ये यही है बेकुफ्रेम का मतलब इनकार करना, क्योंकि मैं चाह नहीं रही, मैं उस रास्ते पे आना नहीं चाह रही, मैं उसके मुताबिक अमल करना नहीं चाह रही, मैं अपने दुनिया को छोड़ना नहीं चाह रही, दुनिया की चीज़ों को छोड़ना नहीं चाह रही, तो मैं इनकार कर रही हूँ। तो मेरे इनकार की वजह से अल्लाह ताला ने एक ये किया कि अपनी रहमत का हाथ मेरे सर से हटा लिया। लेकिन बहुत थोड़े होंगे जो ले लेंगे, तो अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन थोड़ों में हम भी शामिल हो जाएं। तो ऐसे तो शामिल नहीं हो सकते जब तक हम अपनी ज़िंदगी को वक्फ ना करें। अब मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ वक्फ करने की, इसकी गहराई में जाएं कि वक्फ किसे कहते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक्फ करनी है। इस वक्त हमने अपनी ज़िंदगी अपने लिए वक्फ की हुई है। मुझे अपने से निकल कर मुझे अल्लाह की तरफ बढ़ना है और अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करना है। अब जो जिसको जो दिलचस्पी हो और अल्लाह की तरफ बढ़ना चाहे और अपने को वक्फ करना चाहे, तो वो नेक नियति से मेरी तरफ आए, मशवरा करे, पूछे, जो मैं कहूँ उस पर अमल करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अमल करना है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जब तक अमल नहीं होगा कोई दिलो दिमाग खुलेगा नहीं, कोई रोशनी नहीं आएगी। जब हम अमल करना शुरू कर देते हैं, कहना मानना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह की रहमत की वो किरणें आनी शुरू हो जाती हैं। वो वली अल्लाह की तवज्जो, वो उनकी मोहब्बत, वो उनकी नज़र का फैज़, उसके वजह से मेरा दिल और दिमाग खुलता चला जाता है। मुझ में तंग नज़री मेरी ख़त्म हो जाती है, बखीली मेरी ख़त्म हो जाती है, गुस्सा मेरा ख़त्म हो जाता है, बोझ मेरा ख़त्म हो जाता है, हसद मेरा ख़त्म हो जाता है, लालच मेरा ख़त्म हो जाता है। ये तमाम बीमारियां सब ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ कौन रहता है? अल्लाह ही अल्लाह रहता है। हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह रहता है। जो कर रहा है अल्लाह के लिए कर रहा है। बस अपनी ज़िंदगी की नफ़ी कर दी, इसे कहते हैं वक्फ करना। अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिश की सब की नफ़ी कर दी। अब कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। जो देता जाए वो खुशी से लेते जाएं। दुनिया के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ताला ने मुझे अपने लिए पैदा किया। मुझे अल्लाह के पीछे पड़ना है, अल्लाह को लेना है, अल्लाह से अल्लाह को लेना है। इस वक्त तो ज़बानी तो हमारा अल्लाह अल्लाह है, लेकिन वैसे हैं हम गांव जबान क्या कहते हैं। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमाता है
के पास अल्लाह की वो किताब कुरान आई जो उनके साथ वाली किताब तौरात की तस्दीक फरमाती है, और उससे पहले वो इस नबी के वसीले से काफिरों पर फतह मांगते थे, तो जब तशरीफ लाया उनके पास वो जाना पहचाना उससे मुनकिर हो गए थे, तो अल्लाह की लानत मुनकिरों पर।
अच्छा, अब ये इसमें जिक्र किसका हो रहा है? यहूदियों का हो रहा है। हुआ क्या था कि यहूदी मिस्र से बनी इसराइल जो थे, मार खाते खाते शाम में मार खाए, ईरान में भी मार खाए, सब जगह मार खाते खाते आखिर उन्हें समझ में नहीं आया करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, हमारा दीन ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, हम तबाह बर्बाद हो गए, हर एक से शिकज खाते रहे। तो इनकी किताबों में रसूल पाक सल्लम के बारे में लिखा हुआ था कि एक नबी आएगा, वो सैफुल तलवार होगा, अल्लाह की तलवार होगा, और उसका हिजरत की जगह मदीना होगी। تو یہ تمام یہودی کیونکہ وہ تو جانتے تھے کتابیں تو پیغمبر تو ان کے پاس آتے رہے, کتابیں تورات زبور انجیل سب ان کے پاس تھی, اس میں حضور کا نام لکھا ہوا تھا, پیدائش بھی لکھا ہوا تھا, ہجرت کی جگہ بھی لکھی تھی, ساری تفصیلات لکھی ہوئی تھی, اور آخری وہ مدینہ میں ہوئے. تو یہ لوگ سب مدینہ آ گئے کہ چلو مدینہ چلتے ہیں, وہ نبی آئے گا تو ہم ان پر فوراً ایمان لے آئیں گے. یہ وہ مدینہ آ گئے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو پھر کیا ہوا؟ نہیں مانا. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ مانا کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاءہم کتاب من عند اللہ, آ گیا جب ان کے پاس وہ کتاب اللہ کی طرف سے, کیا قرآن, مصدق لما معہم, جو تصدیق کرتی ہے ان کی کتاب کی, یعنی ان کے پاس جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے قرآن آیا تو جو تصدیق کرتی تھی ان کی کتابیں تورات اور زبور, وکانو من قبل یستفتحون علی الذین, اور یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے گا تو ہم ان پر ان کی ذریعے سے فتح, ظاہر ان کا جو گروپ میں جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ جو صحابہ جو ساتھی ہوں گے وہ کامیابی حاصل کریں گے. تو کہا ہم بھی جائیں گے, وہاں مدینہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایمان لائیں گے اور ہم بھی کامیابی, دعائیں مانگا کرتے تھے سب اللہ الذین کفروا, لیکن جب آ گیا تو انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ فلما جاؤں ما عرفوا کفروا, پہچان گئے جب آ گئے رسول پاس ان کے پاس پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں, لیکن انکار کر دیا. بھی لعنت اللہ علی الکافرین, لعنت ہے اللہ کی انکار کرنے والوں پر. اب یہ میں آیت کو میں اپنے اوپر, مجھے یہودیوں سے مطلب نہیں ہے, مجھے اپنے سے مطلب ہے. اب میں اپنے لیے اس آیت کو سمجھتی ہوں. اب مجھے معلوم نہیں ہے, سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے موجود ہیں, قرآن حق ہے, اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کو کہا ہے, اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا ہے, چغلی سے منع کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حسد سے منع کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے, دنیا سے زیادہ محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. میں مان رہی ہوں, میں نہیں مان رہی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ اللہ کو یہ چیزیں نہیں پسند, لیکن میں کر رہی ہوں. میں نے پہچان لیا حضور کو, لیکن اتنا ہی پہچانا کہ وہ رسول ہیں آخری, بس اس سے آگے میں نہیں پہچان رہی. کیوں؟ کہ میں عمل نہیں کرنا چاہ رہی. یہ اپنی اپنی حالت پہ ہر ایک اس گروپ میں جو شامل ہے, ہر ایک اپنی اپنی حالت کو دیکھے, کیونکہ ہم اکیلے جائیں گے اللہ کے آگے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اکیلے پوچھے گا. مجھ سے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کا نہیں پوچھے گا, میری ساس کا نہیں پوچھے گا, میرے بچوں کا نہیں پوچھے گا, میری کسی چیز کا نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے 5 سوال کرے گا اپنے سامنے کھڑے ہو کے. زندگی دی تھی, جوانی دی تھی, دولت دی تھی, اور اب نبی دیا تھا, کیا کیا؟ 5 سوال ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا. اب ساری میری ساری زندگی جو گھومتی ہے وہ گھومنی چاہیے قرآن کی گرد, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد. میری گھوم رہی ہے کیا قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں, میری گھوم رہی ہے دنیا داری کی طرف. یہ تیری, یہ میری, یہ اس کی, یہ اس کی, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, یہ وہ, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے, اس میں گزر رہی ہے. کبھی میں نے سوچا کہ میں مسلمان ہوں تو میں کیوں مسلمان ہوں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں تو کیوں نبی ہیں میرے, میرے موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں نبی میرے, عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کیوں ہیں, اللہ تعالیٰ, اور میری کتاب اگر قرآن ہے تو زبور کیوں نہیں ہے میری؟ ایک بات ہے نا, سوچنا چاہیے نا, ہمیں تو سوچتے, ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اچھی طرح جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں, تصدیق کرتی ہے قرآن کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, اللہ کے نبی ہیں, یہ ہم جانتے ہیں. ہاں ہاں جانتے ہیں, اور ہم دعائیں کرتے ہیں, ہم بھی تو دعائیں کرتے ہیں, ایمان کی دعا کر رہے ہیں ہم, آمین تو باللہ و کتبہ و رسولہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں, عمل کر رہے ہیں, عمل اس کے خلاف ہے. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں, ہم نہیں پہچانتے. जब तक मैं उनके रंग में नहीं अपने को रंगने की कोशिश करूंगी, इसका मतलब ये मैं भी नहीं पहचानती, मैं भी इनकार कर रही हूँ। अब ये देखें, ये आयतें अपने ऊपर फिट करनी है। मुझे बनी इसराइल से, यहूद और नसारा से मतलब नहीं है, ये कुरान मेरे लिए है। मेरे लिए ये कुरान है, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानती। अगर मैंने उनके उनका उस्वाए हुस्ना नहीं लिया, उस पर अमल नहीं किया, मैं उन्हें नहीं पहचानती और मैं इनकार कर रही हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान से। तो जब तक मैं इनकार करती रहूँगी, अल्लाह की रहमत से दूर रहूँगी। अब अल्लाह की रहमत दुनिया नहीं है, अल्लाह की रहमत अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह की रहमत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानना है, ये है असल रहमत। दुनिया नहीं है, दुनिया है तो बनाते ना फिर दुनिया सनाता हूँ फिलहाल सनाता हूँ।